यह कथा परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया पंजाबी बाग नई दिल्ली में 19/1/2013 स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक संख्या 5 और बुक डिस्ट्रीब्यूशन का पुरस्कार के ऊपर हरे कृष्ण।
हम सब उठा सकते हैं। इस श्लोक की संस्कृत इस प्रकार से है, हमें बात जुड़ाओगे अति सरल है। तस्मा
जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन भगवान का श्रवण महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा निमायक तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तात्पर्य, पिछले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह बताया कि किस प्रकार मूर्ख एवं भौतिकवादी व्यक्ति सोकर विशेष जीवन में लिप्त रहकर आर्थिक दशा सुधारने तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में जो विस्मृति के कर्म में विलीन हो गए हैं अपना मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं। इन भौतिकवादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म के चक्र में अपने को बांध देता है। यह चक्र 84 लाख योनियों में जलचर वनस्पतियां सरीसृप पक्षी पशु असभ्य मानव तथा पुनः मनुष्य रूप में जन्म मृत्यु का चक्कर है और यही सकाम कर्म के चक्कर से छूटने का सुअवसर है। अतः यदि कोई इस विषाक चक्र से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए अर्थात अपने ही अच्छे या बुरे कर्म के फल का भोगता नहीं बनना चाहिए। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कोई कर्म नहीं करना चाहिए अपितु हर वस्तु को सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त करना चाहिए। कर्म करने की यह विधि भगवत गीता में 9:27 में संस्तुत है जिसमें भगवान के निमित्त कर्म करने के लिए आदेश है। अतः सर्वप्रथम मनुष्य को भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह छानबीन करके श्रवण करने के बाद उसके भगवान के कार्यकलापों का महिमा गायन करना चाहिए। इस तरह वह निरंतर भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। भगवान का श्रवण तथा महिमा गायन भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है और इस तरह करने पर मनुष्य सदा भगवान के सानिध्य में रहेगा।
ओम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवमूर्ति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। जाओगे मेरे बाद हे भरत वंशी जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन भगवान का श्रवणम महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा नियामक तथा भक्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी हमें उपदेश दे रहे हैं। वैसे तो सुखदेव गोस्वामी जी ने उपदेश दिया था किसे कृष्ण मनाज को, और ये उपदेश है पूरे मानव समाज के लिए। और इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले कह रहे हैं ये जो उपदेश है वो उनके लिए है जो सब प्रकार के कष्टों से मुक्त होने की इच्छा रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप सब कष्टों से मुक्त होने की इच्छा रखते हो या नहीं? सब कौन कौन रखता है? क्योंकि अगर आप मुक्त कष्टों से मुक्त होने की इच्छा नहीं रखते ये संदेश आपके लिए नहीं है। लेकिन कहते हैं ये संदेश केवल उनके लिए है जो कष्टों से मुक्त होने की इच्छा रखते हैं। और एक समस्या आपके एक समस्या आपके वातावरण में यह है कि लोग स्वीकार ही नहीं करते कि वो कष्ट में है। लेकिन आप किसी को भी मिलते हो कहते हो कैसे हो तो लोग क्या कहते हैं? नया साल शुरू होता है आप एक दूसरे को कहते हो हैप्पी न्यू ईयर। हम सब ये सोचते हैं कि भौतिक संसार में सुख ही सुख है, केवल वो भाग्यवान बुद्धिमान व्यक्ति है जो स्वीकार करता है कि कष्ट कष्ट। और जो भौतिकवान व्यक्ति क्या सोचता है, अगर कष्ट है भी कब सुख आ जाएगा? हमारे विज्ञानी हमें हमारा सहयोग दे रहे हैं, हमारे राजनीतिक नेता हमारा सहयोग दे रहे हैं, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये जानता है कि भौतिक संसार में कष्ट कष्ट। तो इस विषय का वर्णन शास्त्रों में बार बार किया जा रहा है। ये नहीं कि ये पहला श्लोक है ये संदेश के साथ, ये श्लोक जो दूसरे स्कंद का है प्रथम स्कंद में भी इसी प्रकार का भाव प्रकट हो रहा है और समाप्ति तक यही भाव प्रकट होते जा रहा है। क्यों? ये परम भगवान उनके प्रतिनिधि बार बार हमें याद दिला रहे हैं। क्या याद दिला रहे हैं? क्या हमारा कर्तव्य होना चाहिए? श्रीमद् भागवत धर्म में शुरू से अंत तक सिर्फ भक्ति का ज्ञान है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं इस श्लोक में कि जो व्यक्ति समस्त भक्त कष्टों से मुक्त होना चाहता है तो भौतिक संसार में कष्ट कष्ट है, जैसे भगवान कहते हैं दुखार है दुख दुख, पर कोई उपाय है? भौतिक समाज में कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हैं यह बीमारी है तुम्हारी, तो आप पूछते हो इसका कोई इलाज है, तो कहते हैं क्या इलाज नहीं है। भौतिक समाज में अनेक परेशानियां हैं समस्याएं हैं जिनका कोई उपाय नहीं, पर हमारे शास्त्र में समस्या की पहचान ली है तो फिर उसका उपाय क्या है? अगर हम इसका लाभ उठाएं तो हमें समस्या से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान ने सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले तो कह रहे हैं कि जो ये कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए उपाय दे रहे हैं। क्या है उपाय? श्रवणम कीर्तनम और विष्णु स्मरणम। आगे ये कहते हैं परम भगवान जो हैं परमात्मा के रूप में हरि के हृदय में विराजमान है। ये भाव ये संदेश गीता के 18वें अध्याय में भी मिलता है जब भगवान क्या कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु रज्जुना। भगवान हरि के हृदय में विराजमान है। किस रूप में? परमात्मा के रूप में। परमात्मा के रूप में भगवान अनेक कार्य कर रहे हैं। एक तो वो हर कार्य के साक्षी होते हैं और हमारी इच्छा के अनुसार हमें बुद्धि देते हैं। सर्वस्य चाहं भगवान गीता में कहते हैं कि मैं ही स्मरण का कारण बनता हूँ, मैं ही अपमान भूलने की योग्यता भी मेरे से आ रही है। जैसे आप सब यहाँ उपस्थित हो, क्यों बुरा आप सब अकेला आते हो पंजाबी बात मानते हैं? क्योंकि आपकी इच्छा है कि आप भगवान से जुड़े रहना चाहते हो। आप समझते हो कि साधु संत की आवश्यकता है। आप समझते हो कि भगवान अपने आचार्य विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। वैसे आचार्य विग्रह और भगवान में कुछ अंतर नहीं है। तो जब आप मंदिर आते हो, श्री श्री कृष्ण बलराम जी का दर्शन लेते हो, अधिक रमन जी का दर्शन लेते हो, तो वैसे ही आप सोच सकते हो कि आप वैकुंठ धाम में हो। क्योंकि ये जो मंदिर है धारण के लिए, अगर हम आपसे पूछें ये मंदिर का पता क्या है, तो आप क्या बोलोगे? कहाँ है ये मंदिर? हाँ, पंजाबी वाद में। तो असल में ये मंदिर है वैकुंठ धाम में। तो जब आप इस मंदिर में आते हो, आप ये मत सोचना पंजाबी वाद में हो, आप कहाँ हो? वैकुंठ धाम। एक समय हमारे गुरु जी बॉम्बे में एक भक्त थे हमारे, डॉक्टर पटेल, दीक्षित भक्त नहीं थे पर प्रभुपाद जी के विचार में थे। तो प्रभुपाद जी रोज सुबह एक घंटे वॉक के लिए जाते थे, तो डॉक्टर पटेल उनके साथ जाता था कई बार। तो एक दिन वो वॉक करके ध्रुवी चाहते हरे कृष्ण मंदिर ध्रुव बॉम्बे में देखा है, तो आपने देखा होगा कि मंदिर के पास ही एक ध्रुव बीच, तो प्रभुपाद जी ध्रुव बीच में जाते थे रोज एक घंटा। तो जब वो वापस लौटे हरे कृष्ण मैन में, तो हमारे हरे कृष्ण मैन काफी बड़ा व्यू में मंदिर है, चार एकड़ जमीन में और काफी ऊंची दीवार है। तो जब मंदिर पहुंचे लौट रहे थे, डॉक्टर पटेल ने प्रभुपाद जी को कहा, स्वामी जी आपने इतनी ऊंची दीवार बना दी है, लोग कहेंगे कि अंदर जेल खाना है। तो प्रभुपाद ने कहा, the prison is outside, inside is all freedom. प्रभुपाद ने कहा कि असली जेल खाना है बाहर मंदिर के, अंदर है केवल फ्रीडम, मुक्ति, आजादी। तो बहुत ही संसार में है कष्ट कष्ट। तो जब आप इस मंदिर में आते हो, तो आपको ये सोचना चाहिए कहाँ कि आप कहाँ आ गए हो? वैकुंठ धाम, यहाँ भगवान निवास कर रहे हैं। वैकुंठ धाम का अर्थ क्या? जब भगवान निवास करते हैं। और जब आप यहाँ आते हो, भगवान का दर्शन देते हो, तो भगवान की कृपा भी प्राप्त करते हो, साथ में भक्ति के पति के तरफ श्रद्धा भी बढ़ती, इसलिए भगवान आचार्य विराज के रूप में प्रकट होते हैं। तो यहाँ शुक्रदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर तुम कष्टों से मुक्त होना चाहते हो, तो उन्होंने तीन कार्यों पर बल दिया है। राज ये कहते हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में भी हरि के हृदय में उपस्थित है। तो परमात्मा के रूप में भगवान हर कार्य के साक्षी बनते हैं और परमात्मा की इच्छा से ही किसी कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है। और परम भगवान परमात्मा के रूप में इच्छा के अनुसार हमें बुद्धि देते हैं। तो जिन लोगों में ये भावना है, श्रद्धा है कि हम भगवान के शरणागत होना चाहते हैं, तो परमात्मा को बुद्धि देते हैं, आओ मंदिर आओ, दर्शन लो, हर शनिवार को मंदिर आओ, ग्रंथ को पढ़ो। और जिनके हृदय में भावना होती है कि हम भगवान को भूले, क्या आवश्यकता है इस शिक्षा की, तो वे परमात्मा को ऐसी बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा भगवान को भूल जाओ। तो यहाँ श्री गोस्वामी ये स्थापित कर रहे हैं कि परमात्मा है और वो है नियामक और समस्त कष्टों से के रक्षा करने वाले। तो भक्तों की रक्षा कौन करता है? स्वयं भगवान करते हैं। और गीता में भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो पूरे मानव समाज को उपदेश दो क्या, मेरा जो भक्त है कभी नहीं नष्ट। दूसरे शब्द में भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं। आप शास्त्रों में अनेक उदाहरण पढ़ते हो, प्रहलाद महाराज का, हरिदास ठाकुर का, ये नहीं कि हम भगवान के भक्त बने तो हमें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। तो भगवान हमें शक्ति देते हैं कठिनाइयों का सामना करने के लिए, पर हर स्थिति में पर भगवान भक्तों की सुरक्षा करते हैं। ज्ञान तक में हम सोचते हैं कि किसी बहुत ही सुविधा द्वारा सुरक्षा होगी, तो ऐसी सुरक्षा कौन? केवल परम भगवान कर सकते हैं। तो इस श्लोक में तीन कार्यों पर बल दिया गया है। क्या है ये तीन कार्य? श्रवणम, सुनना, विश्व सुनना। सबसे पहले इस विषय का उपदेश हमें प्रहलाद महाराज जी ने दिया। प्रहलाद महाराज जब माता के घर में थे, उनकी माता नारदमुनि के आश्रम में विराजमान थी और माता को नारदमुनि ने उपदेश दिया था, तो प्रहलाद ने उपदेश माता के घर में स्वीकार किया था। तो प्रहलाद महाराज के पिता ने पूछा, बेटा ये बताओ कहाँ तुम पाठ में क्या सीख गया? प्रहलाद के दो अध्यापक थे, जो शुक्राचार्य के पुस्तक थे। तो ध्यान उन्होंने खास आदेश दिया था, किसी प्रकार से जब मेरे बेटे का आकर्षण है भगवान के प्रति, उसे ला दो। और संध्या मर्दन ने बहुत प्रयास किया। ध्यान को कभी ये नहीं समझ पाए कि उनके पुत्र को दिव्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। वो सोचते थे कि सन्यासी लोग, साधु लोग देश भ्रमण करा रहे हैं उनके बेटे को दिव्य ज्ञान देने के लिए, पर ये दिव्य ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था जो माता के घर में थे। तो जब उनके पिता ने पूछा, ये बताओ बेटा आज क्या सीखे पाठशाला में, तो बेटे ने ये नवदा भक्ति का ज्ञान दिया, श्रवण कृष्ण विष्णु स्मरण। तो इस विषय का महत्व शास्त्र में बार बार दिया जाता है। आज हम कुंभ मेला से आ रहे हैं, कृष्ण का बड़ा सा कैंप है कुंभ मेला में, सेक्टर 7 में, अगर आप जाओ तो वहाँ जरूर जाना। तो प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु जी ने 10 दिन के लिए रूप गोस्वामी को भक्ति संबंधित शिक्षा दी। रूप गोस्वामी एक समय उनके भाई सनातन के साथ उस समय के सबसे प्रसिद्ध धनी राजा के राज्य पर शासन कर रहे थे। पर उन्होंने नौकरी त्यागी और चैतन्य महाप्रभु जी के शरण में रत हो गए। चैतन्य महाप्रभु जी ने 10 दिन के लिए लगातार उन्हें शिक्षा दी, जो आप चैतन्य चैतन्य मध्यविंदा के 1900 अध्याय में प्राप्त करते हैं। आप में से चैतन्य चैतन्य कोई पढ़ता है? तो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा देते हुए कहा, ब्रह्मांड प्रभु के कौन भगवान की दी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति रखा दी, अनेक योनियों में गुजरने के पास पश्चात तो भाग्यशाली व्यक्ति है जैसे भक्ति का बीज प्राप्त होता है। तो भक्ति का बीज कैसे प्राप्त होता है? 2 साधन है, कौन बताएगा ये दो साधन क्या है? एक एक है भक्तों के माध्यम से साधु संघ, इसलिए आप बार बार सुनते हो साधु संघ की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे शास्त्र में बार बार इस विषय पर बोल दिया गया है। दूसरा है ग्रंथों के माध्यम से, जैसे कि पिछले महीने ग्रंथ के मैराथन के दौरान आप सब भक्तों ने मिलकर कितनी गीता स्पॉन्सर कितनी गीता की बोल दू आपको, आप सब ने मिलकर लगभग 2.5 लाख गीता स्पॉन्सर। तो और जो संत नगर का मंदिर है, जानते हो संत नगर का मंदिर, उन्होंने वहां के भक्तों ने मिलकर मेरे ख्याल से भक्तों ने मिलकर लगभग 4 लाख गीता भाई। और ये 2.5 लाख गीता जो है, अगर 2.5 लाख लोग पढ़ेंगे, कई बार तो हम सोचते हैं कोई नहीं पढ़ेगा, तो लोग पढ़ेंगे, अगर लोग पढ़कर प्रभावित नहीं होते तो आज आप सब यहाँ होते। एक समय था जब आपके दिल्ली में भी इसका अगर कोई भक्ति था, विदेश जाने से पहले स्वामी जी ने बड़ा प्रयास किया था आपके दिल्ली में प्रचार करने के लिए, और स्वामी जी को बड़ा दुख हुआ ये देखकर कि इस देश के जो युवक हैं वो केवल भौतिकता में ही रुचि ले रहे थे। पश्चिम देश में प्रचार करने के पश्चात द्वापर लौटे भारत में विश्व भक्ति की स्थापना करने के लिए, क्योंकि हालांकि उनके गुरु का आदेश था नहीं जाओ इस संदेश को पश्चिम देश की प्रजा के लिए, तो प्रभुपाद जी ये भी देख रहे थे कि भारतवासी अपनी असली संस्कृति से दूर जा रहे हैं। सच है कि प्रभुपाद जी ने प्रयास किया भारत में कृष्ण भक्ति शुद्ध शुद्ध कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए, और आस्ते आस्ते एक केंद्र बना, दो केंद्र बने, और अब लगभग 150 केंद्र हैं पूरे भारत में, आपने दिल्ली में ही 9 केंद्र हैं। और आप देख रहे हो कि जैसे प्रचार बढ़ता है भक्तों की संख्या भी बढ़ती है। तो ये जो 2.5 लाख गीता आपने बांटी है, 2.5 लाख लोग जब गीता पढ़ेंगे, इतना आप सोच सकते हो, सारे 2.5 लाख तो नहीं प्रभावित होंगे, पर अगर 5% लोग भी इससे प्रभावित हो जाए तो आप देख सकोगे भगवान का प्रचार कितना पड़ेगा। इस आज मैं आज उठा मैं कुंभ मेला में था, तो कुंभ मेला में कोने कोने में एक बिल बोर्ड लगा हुआ है, कोई हिंदू धर्म खतरे में है बचाओ। ये बात सच है, ये खतरे में है, क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू भाई बहनों की रुचि है केवल भौतिक कार्यों में, धन कमाने में, और देखा जाए बहुत थोड़े व्यक्ति हैं जिनकी शुद्ध अध्यात्मिकता में रुचि है। इसलिए इस संदेश प्रचार की बहुत आवश्यकता है। आज लाखों की संख्या में लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, लाखों की संख्या में इस्लाम स्वीकार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू भाई बहनों में जो प्रचार का उत्साह होना चाहिए वो नहीं है। मुझे भक्त कह रहे थे कि हमारे अलाहाबाद का जो केंद्र है उसके बिल्कुल सामने थोड़ी दूरी पर क्रिश्चियंस का इतना बड़ा आश्रम है, हजारों लोग हर साल जुड़ते हैं। तो इस संदेश की बहुत आवश्यकता है, और हमारे शास्त्रों में प्रचार के कार्य को बहुत बल दिया गया है। इसलिए भगवान गीता के कहा गया क्या कहते हैं, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है जो मेरा प्रचार करता है, उससे ज्यादा प्रिय मैं तो हुआ है ही ना होगा। तो दो माध्यम हैं जिनके द्वारा हम भक्ति में जुड़ते हैं। आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, अगर आपसे पूछा जाए आप कैसे जुड़े कृष्ण भक्ति में, तो आप क्या कहोगे, या किसी भक्त या रिश्तेदार के निमंत्रण से, या किसी ने आपको ग्रंथ दिया, आपने ग्रंथ पढ़ना शुरू किया और इस प्रकार आपको जीवन सुधर गया। तो इस संगत की आवश्यकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अनेक युगों में गुजरने के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे भक्ति का बीज मिलता है। तो ये भक्ति का बीज उगेगा कैसे, उगेगा किस माध्यम से, श्रवणम और कीर्तनम के माध्यम से। वही संदेश आपको इस श्लोक में भी दिया जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु के संदेश में और गीता के संदेश में कोई अंतर नहीं। चैतन्य महाप्रभु के संदेश में और श्रीमद् भागवत के संदेश में कोई अंतर नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्ति का बीज तो प्राप्त हो गया है। भक्ति का बीज का अर्थ है भक्ति के महत्व का ज्ञान, क्योंकि आप अगर शास्त्र को पढ़ोगे तो उसमें आपको क्या उपदेश मिलेगा, भक्ति योग। भगवत गीता का निर्णय क्या है, भक्ति मनोज्ञानों के सर्वधर्मा परिचर्य। भगवत गीता का निर्णय क्या है, भगवान गीता में क्या कहते हैं कि किस माध्यम से आप भगवान को जान सकते हो, भक्ति के माध्यम से। श्रीमद् भागवत में शुरू से अंत तक क्या ज्ञान है, शुद्ध भक्ति का ज्ञान है। चैतन्य चरितमृत जिसकी रचना केवल 500 साल पूर्व की गई थी, उसमें क्या है, शुद्ध भक्ति का ज्ञान और अनेक श्लोक भगवतम भगवतम गीता के हैं जिनके द्वारा ये साबित किया जा रहा है कि भक्ति एक माध्यम है जिसके द्वारा अपन भगवान को आकर्षित कर सकते हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से ये भक्ति कभी उगेगा। और इस विषय में उदाहरण दिया जाता है, जैसे बीज अगर आप बोलोगे वो उगेगा केवल अगर आप उसे जल पिलाओगे, जल नहीं पिलाओगे तो उगेगा नहीं उगेगा, चाहे आप कितने भी अच्छा फर्टिलाइजर ले आओ। तो भक्ति की भावना बढ़ेगी अगर आप श्रवणम और कीर्तनम करोगे, अगर आप हरे कृष्ण मंदिर जाप करोगे और सुनोगे। यहाँ शुक्रदेव स्वामी क्या कह रहे हैं, श्रवणम, श्रवणम का अर्थ है सुनना। आगे कहते महिमा गायन, इसका अर्थ है कीर्तनम। भगवान ने हमें जीव दी है और कितने काम दिए हैं, दो काम दिए। जीव के द्वारा आप चाहो तो भौतिक विषय की चर्चा कर सकते हो, चाहो तो भगवान का गुणगान कर सकते हो। तो जीव का सुदृढ़ क्या है, अगर आप जीव के द्वारा भगवान का गुणगान करो। तो शास्त्र में यह निर्णय है कि कलयुग में दोषी दोष है, दोषी दोष। ध्यान देखो भौतिक कार्य के प्रति के निमंत्रण और पर एक गुण है कलयुग में, क्या है वो एक गुण, कृष्णा का नाम, कली काली नाम रूप कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान अवतारित होते हैं उनके विभिन्न नामों के माध्यम से। तो शास्त्र का निर्णय है कि जीव के द्वारा हमें भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए, पर अविद्या के प्रभाव के कारण हालांकि भगवान के नाम मीठे हैं, हम इतने आकर्षित नहीं होते भगवान के नामों के प्रति। जैसे कि जब जाप करने बैठते हो आपको नींद आ जाती है, जब जब आपको कहा जाए सोलह माला करो, कई लोग तो सोलह माला पहुंचने में कई साल देते हैं, तो कई जो भजन है और वो भी कहते हैं क्यों नहीं थोड़ा आराम करें करना चाहिए। तो भगवान अपने नामों में प्रकट करते हैं और इन नामों के उच्चारण से क्या लाभ है, क्या लाभ है कौन बताएगा, पहला लाभ क्या है बताइए। हाँ, इसी भाव को चैतन्य महाप्रभु जी ने इन शब्दों में कहा है, चित्त दर्पण मान लेना, जैसे कि आईने के धूल को दूर करते हो साफ कागज के साथ। हम सबके हृदय में धूल है या नहीं है, क्या भक्तों के हृदय में नहीं है, धूल है। तो धूल दूर हो सकती है कैसे, है ना। आप सबके तो सौभाग्य है कि आप जन्म भारत भूमि में हुआ था, पर इसका हम क्या नहीं भक्त हैं जिनका जन्म उन सुस्वातर में हुआ था जहाँ भी कभी कृष्ण किसी ने कृष्णा राम का नाम भी नहीं सुना था। और उन देशों में भी आप अगर आप जाओगे तो देखोगे कि वो इतने ऊंचे कोटि के भक्त हैं कैसे, यह हरि नाम के जादू। तो इन ग्रंथों में हरि नाम की महिमा का गुणगान है। तो प्रचार के माध्यम से हम लोगों को ये ग्रंथ देते हैं, जब लोग इन ग्रंथों को पढ़ते हैं इसके द्वारा क्या निर्णय करते हैं कि हमें भी हमारे जीवन को सुधारना चाहिए। और सुधारने का माध्यम क्या है, भगवान के नामों का प्रचार। और शास्त्र में कहा गया है भगवान ने हमें गीत दिए, गीत द्वारा क्या करो भगवान का गुणगान। भगवान ने कान दिए हैं, कान द्वारा क्या करो भगवान का गुणगान सुनाओ। भगवान ने आपको पैर दिए हैं, पैरों के द्वारा क्या करो भगवान के अंदर चल के आओ या मोटर में आप चला के आओ। और भगवान ने आपको हाथ दिए हैं, हाथों से क्या करना चाहिए और भगवान के मंदिर को साफ करो। भगवान ने आपको आंखें दिए हैं, आंखों के द्वारा क्या करना चाहिए भगवान के आचार्य दर्शन और भगवान के शास्त्रों का अध्ययन। भगवान ने आपको नाक दिए हैं, नाक के द्वारा क्या करना चाहिए, कोर्फ्यूम सुनना चाहिए, जो फूल भगवान को अर्पण करते हैं वो सुनने। जो आपके श्लोक के तात्पर्य में चौपा जी कह रहे थे कि हर कार्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान की खुशी। जैसे भगवान गीता के नौवे अध्याय में कहते हैं यत्रोषि यत्स्नाति यत्रोषि तदाति यत्रोषि कौंके तत्पुरुष मनर्पणम्। भगवान कहते हैं गीता के श्लोक में जो भी तुम कार्य करो, जो दान दो, जो तपस्या करो, जो भी तुम खाओ, क्या करो मेरी खुशी है। खाना है तो केवल कृष्ण प्रसाद करो। आप कुछ कार्य कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, घर की देखभाल कर रहे हो, इस भावना से करो भगवान की खुशी। आप तपस्या कर रहे हो, आप समझते हो तपस्या की आवश्यकता, तो आप तपस्या कर रहे थे भगवान की खुशी के लिए। तो इस प्रकार के भाव से रहोगे तो जिस आश्रम में हो उस आश्रम में रहते ही जीवन को सफल बना सकोगे। तो मैं इस कौन संस्था की तरफ से आप भक्तों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत करके सब ने मिलकर ये ग्रंथों के वेतन ठिकाने को सफल बनाया। प्रभुपाद जी कहते थे इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है कि कोई व्यक्ति एक श्लोक भी पढ़ ले उसके द्वारा, एक श्लोक को पढ़ ले और उसका पालन आरंभ करे वो अपने जीवन को सफल बना सकेगा। तो भगवान ने आज के श्लोक में कहा था कष्टों से मुक्त होना चाहे, तो कष्टों से मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है, वो क्या है उपाय? भगवान की शिक्षा का लाभ उठाना। तो आप सब बड़े सौभाग्यशाली हो, आपकी भक्ति में रुचि है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, हे मेरे प्रिय मत्सर मित्र, धरती के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए जो भी कीमत भरनी पड़े भरो। जैसे कि अगर आप इस प्रांत पर कुछ बीमारी आ जाती है तो जो भी कीमत भरनी पड़े आप भरते हो इलाज कराने के लिए। तो कृष्ण भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करो। और कृष्ण भक्ति इतनी सुंदर, इतना सुंदर है कि आप किसी आश्रम में रहते हुए इसका लाभ उठा सकते हो। आप गृहस्थ आश्रम हो, घर में रह रहे हो, घर में रहकर भी कृष्ण भक्ति का लाभ उठा सकते हो। जैसे जितने महाप्रभु ने कहा, हरि नाम लो, गीता भगवत पढ़ो, साधु संगत का लाभ उठाओ और भगवान के आठ विग्रह की उपासना करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर तुम ये कार्य करोगे तो सदा मेरे साथ रहोगे और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो मैं जानता हूँ कि आप सब ट्रूफी की इंतजार कर रहे हो और काफी पसंद और ट्रूफी बांटना है। मुझे ये भी सूचना दी गई थी कि आज बहुत शादियां हैं, जो कम फंसता है। मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, वेरी द बिगेस्ट बिजनेस, तो मैं तो बड़े व्यस्त करते हैं। और आप सब जो आए हो क्योंकि आपकी भक्ति में रुचि है, तो एक बार फिर से आप सब मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। और जीवन में कहते हैं, सब भक्तों में सबसे प्रिय वो है जो कि मेरा प्रचार करता है। तो आप सब भक्त जो हो, खास करके जिन्होंने गंगा जीवित्व की सेवा में सहयोग दिया, आप भगवान परम भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त बन गए हो। तो ये मत सोचना कि आप तो प्रिय भक्त बन गए और आगे जाने की आवश्यकता नहीं। हमें ऐसे ही सेवा करते रहना चाहिए कि हम सर्वों के प्रिय भक्त बने, ठीक है ना। भक्ति सिद्धांत जी कहते थे, ऐसी सेवा करो कि भगवान आपको देखने के लिए आए। अक्सर तो हम कहते हैं भगवान दिखाओ, भगवान का दर्शन दो हमें। भक्ति सिद्धांत जी कहते थे, ऐसी सेवा करो कि भगवान आपको देखने के लिए आए। तो आप सब हर साल इतनी अच्छी सेवा करना तो भगवान आपको देखने आएंगे, भगवान कहेंगे तुम प्रिय भक्त होंगे। तो हम सब ने प्रचार का उत्साह, और स्वामी जी कहते हैं धरती के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए अनेक वर्षों की आवश्यकता है, तुम्हें एक है उत्साह। तो हम सब प्रचार का उत्साह होना चाहिए। ये सब संभव हो पाएगा अगर हम ध्यान से शरण कृष्ण को भी निभाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है शरण कृष्ण। और शरण कृष्ण करोगे तो शुद्ध हृदय शुद्ध होगा और आप में भक्ति की भावना बढ़ेगी और आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी जिसके द्वारा माया का विरोध कर सकोगे। माया काफी प्रभावशाली है कि नहीं? तो माया का अगर विरोध करना है तो आपको आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। तो आध्यात्मिक शक्ति कैसे आएगी? कैसे आएगी? स्वर्ण कीर्तनम के माध्यम से। और आगे आज के श्लोक में कहते हैं विष्णु स्मरण, मतलब कि भगवान की लीला, भगवान का उपदेश, भगवान की इच्छा, भगवान के आचरण ग्रह, इन सब भावों का मनन करो। तो ये है सबसे पढ़ने के लिए संस्कृत मान करने की आवश्यकता नहीं। हरे कृष्ण को भगवान ने जीत दी है, हम सदा इसका उच्चारण कर सकते हैं। आप सब ध्यान से महामंत्र का जाप कीजिए। रब ने अध्यात्म की उनको सपोर्ट बना लिया। हरे कृष्ण।